ओम शांति। वर्तमान समय और परिस्थिति के अनुसार हरेक के मन में एक संकल्प आता है कि 2016 तो जा रहा है, 2017 आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, परीक्षा हो जाती है, परीक्षा होने के बाद उनके मन में भी एक संकल्प आता है, इसके बाद मुझे किस डिग्री को प्राप्त करना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये विचार चलता है। ऐसे ये भी एक रूहानी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इसमें जो हम बच्चे पढ़ते हैं हमारे मन में भी एक विचार आता है, इसके बाद हमको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण बनना है। बाबा ने लक्ष्य दिया, बच्चे बाप समान बनो। और जो बाबा हमको वर्षा देने आ रहा है तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। तो इस पद तक पहुंचने के लिए, संपूर्ण प्राप्ति के लिए, तो देखा गया हरेक के मन में आता है क्या पुरुषार्थ करें हम। तो उसके अंदर भी तीन पद है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, दुनिया में भी नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री है। यहां भी एक है प्रजा, एक है रॉयल फैमिली, एक है राजा। पुरुषार्थ के अंदर भी तीन है, एक है पुरुषार्थी, एक है तीव्र पुरुषार्थी और एक है श्रेष्ठ पुरुषार्थी। तो उसको देखते हुए तो हमें चॉइस करना है कि हमें किस लेवल में जाना है, प्रजा बनना चाहिए। किसी किसी की कैपेसिटी ऐसी है, हमने देखा मधुबन में एक यज्ञ का पुराना भाई था, आप कभी जानते होंगे अर्जुन दादा करके, उसको कहते थे, बाबा भी कहता था, बच्चे आप राजा बनेंगे। नहीं बाबा, राजा नहीं बनना है, आपके महल में मैं पहरेदार बनूंगा, पहरा दूंगा। तो किसी किसी का लक्ष्य होता है आप आओ ताज पहन करके आगे बैठो, नहीं सिंहासन पर नहीं, सिंहासन में बैठेगा अटल बैठना पड़ता है, इधर उधर हिल नहीं सकते, नीचे ठीक है, आराम से इधर उधर मुड़ सकते हैं, रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। तो ऐसे हरेक का जीवन का लक्ष्य अलग अलग है, तो उसको देखते हुए बाबा ने भी व्यवस्था बताई है। ऐसे पवित्रता में भी तीन है, प्रजा के लिए पवित्रता अलग है, रॉयल फैमिली के लिए पवित्रता अलग है डेफिनेशन, और राजा के लिए पवित्रता अलग है। तो हर चीज तीन ग्रेड्स में है। उसके अंदर देख लो, एक हम साधारण भाषा में कहते पुरुषार्थी, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थी के जीवन में जिसके मन में लक्ष्य है, पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, हम पुरुषार्थी है, उनके अंदर ये विचार चलता है, ड्रामा फिक्स है, हूबहू रिपीट हो रहा है, मेरा जीवन इस ड्रामा में पार्ट यही है, ये समझ के चलते हैं तो साधारण है। और एक है उनके बाद, उसके लिए भी एक है, बाबा ने कहा, उसकी विधि भी बताया, बच्चे ये करो, पुरुषार्थ गलत नहीं है, हर एक का चॉइस है। तो उसकी विधि भी बताया बाबा ने, बच्चे चलते फिरते हर एक को देखते ही दुआएं देते जाओ, सत्युग में पहुंच जाएंगे, किसी को भी देखते ही। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर वन राजयोग है भी है ये, और नंबर वन पवित्रता भी यही है, किसी को देखते ही श्रेष्ठ संकल्प, क्योंकि थॉट इज रूट कॉज, संकल्प ही सभी का कारण है, बीमारियों का, दुखों का, श्रेष्ठ कर्म का, भ्रष्ट कर्म का, हर एक चीज का कारण संकल्प है। तब दुनिया में कहते हैं मन एक तूफान है, हम मन को कैसे रोके, मन न चाहते व्यर्थ विचार आता है, क्या करें। तो ये ऑर्डिनरी है कि किसी को देखते श्रेष्ठ विचार करो। बाबा ने कहा शुभ भावना रखो, देखते ही शुभ, बाबा ये आपका बच्चा है, इसका आप कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको शांति की शक्ति दे दो। और एक कहा, किसी को देखते ही मिलते हो, आज के मुरली के पॉइंट सुनाओ, शुभ समाचार दे दो। ये भी याद में आया, चलते फिरते श्वासोश्वास बाबा ने कल कहा, याद करो, पुरुषार्थी लेवल है, सत्युग में पहुंच जाएंगे जरूर, लेकिन इतना ही सहज सब कुछ नहीं है, इसके आगे और एक कदम है। उसको कहा त्यूर पुरुषार्थी, कल मैंने गलती की थी, कल मैंने गुस्सा किया था, आज मेरे से दोबारा नहीं होना चाहिए। ये मम्मा का जीवन का लक्ष्य था। मनुष्य के जीवन में एक दफा भूल हो सकती है, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा होती है 100 गुना दंड मिलता है, क्योंकि समझ आ गया आपको, बिना समझ से कुछ होता है चलो को हर जन बाबा भी कहता है बच्चे माफ, लेकिन दोबारा अगर होता है समझने के बाद भी तो 100 गुना दंड है उसके लिए। दुनिया में नियम भी है, देर इज नो एक्सक्यूज, उसको माफ नहीं होता, देर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन, मुझे पता नहीं था कायदा, इसलिए बाबा हर चीज स्पष्ट करके बताता है, जिसको जो चाहे ले वे, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर हरेक को स्वतंत्रता है, किसी को नहीं कह सकते आपको यही बनना चाहिए यही करना चाहिए, नहीं, हर एक को इतनी स्वतंत्रता दिया है, देयर इज अ चॉइस कि आप इन तीनों में से 1, 2, 3 आपके इच्छा के अनुसार आपके लक्ष्य के अनुसार आप चॉइस कर सकते हो। दूसरा है मेरे से एक बार भूल हो गई, समझ में आया ये बाबा के श्रीमत के अनुसार नहीं, भगवान भी नहीं चाहता है, और अंदर आत्मा इनर कॉन्शियस इज बाइटिंग, अंदर भी खाता है, ज्ञान सुना है समझा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, अंदर रियलाइज होता है तो तुरंत परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक बात याद रखना, दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऑफिसों में सब जगह पर लिखा रहता है एक कि महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है, ये बहुत पुराना महावाक्य है, आफ्टर रियलाइजेशन देयर विल बी अ चेंज। अभी आप सोच लो, महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है, मुझे लगता मैंने अपने जीवन में आज से 10 साल पहले इस महावाक्य को, क्योंकि बहुत दुनिया वाले पूछते हैं कैसे कहते हो आप भगवान का ज्ञान ही सत्य है, रामायण महाभारत गीता ये भगवान का ज्ञान नहीं, कैसे कहते हो, किस आधार से कहते हो, जो आपके पास ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ही शिव बाबा आता है वही भगवान है, वो जो बोलता है वही सत्य है, ये किस आधार से कहा आपने, एक यूनिवर्सल ट्रुथ चाहिए। साइंस ने हमको पढ़ा, आज लोगों का साइंस के ऊपर विश्वास है, 2% हाइड्रोजन ले लो 1% ऑक्सीजन ले लो, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ पानी ही बनेगा दूध नहीं बनेगा, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यहां भी आज के दुनिया को बुद्धिजीवियों को टीवी के द्वारा बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो लोग तर्क करते हैं कैसे कहते हो आप भगवान आया है, ये भगवान आके पढ़ाता है, प्रूफ चाहिए, तो बहुत सारे प्रूफ है, इसमें से एक सैंपल बताता हूं आपको। जैसे चावल का हंडा पकता है तो सारे चावल को देखा नहीं जाता, एक दाने को देखा जाता है, एक पक गया तो सब पक गया है। तो यहां भी एक वर्षन आपको बताता हूं, आप देखना दुनिया के महावाक्य, शास्त्रों के महावाक्य, मनुष्य के महावाक्य और भगवान के महावाक्य में अंतर क्या है। कैसे कहते हो भगवान आके पढ़ाता वो ज्ञान का सागर, एक चीज बताता हूं, देखो दुनिया का महावाक्य है, महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है, आप मानते हो, आप अपने आप से पूछो, मैंने जब ये महावाक्य अपने जीवन में लगाया, नहीं, महसूस करने के बाद परिवर्तन नहीं होता है। इस महावाक्य के अंदर 2 शब्द की मिस्टेक्स है, 2 शब्द मिस हुए हैं, तो ये 2 शब्द ऐड करो तो ये महावाक्य कंप्लीट होता है कि मनुष्य अल्पज्ञ है, कोई भी हो भगवान सर्वज्ञ है। ये दो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा आपको। तो कैसे कहते हो, देखो आप मेडिकल स्टोर में जाओ, सिरदर्द की गोली ले लो, मिल जाएगा आपको, आप ले सकते हो, उसके ऊपर लिखा रहता है एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर को पूछ के लेना, क्यों सिरदर्द है मुझे। हाँ, सिरदर्द तीन चार प्रकार से होता है, माइग्रेन के कारण हो रहा है, कोल्ड के कारण हो रहा है, पित्त के कारण हो रहा है, चौथा आपका चश्मे का नंबर चेंज है। सिरदर्द नहीं है, नंबर चेंज करो सब ठीक हो जाएगा, ये कौन बताएगा? वो डॉक्टर को पूछना पड़ेगा। वो कहेगा ये गोली आपको जरूरत नहीं है, आप आए वाले डॉक्टर से नंबर चेंज कर लो, चश्मा चेकिंग करो, दवाई की जरूरत नहीं। तो ऐसे यहां भी बहुत कुछ है, स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो यहां भगवान आके कौन सा राजयोग सिखा रहा है, प्रश्न आएगा ना, वो कौन सा राजयोग है? तो वो राजयोग है यहां आके शिव बाबा जो राजयोग सिखा रहा है, बच्चे अपने को आत्मा समझ, ये विधि है। अगर आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, आप मेरे से बात कर सकते हो, करो। नहीं, नंबर चाहिए। तो मेरा नंबर आपके पास कैसे आएगा? जब तक आप मुझे मिले नहीं तब तक मैं अपना नंबर कैसे दे दूं? तब बाबा ने कहा, जब मैं सृष्टि पर आता हूं मैं स्वयं ही स्वयं का परिचय देता हूं। तब कहा बाबा ने आके, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करेंगे तो आपका आवाज मेरे तक पहुंचेगा। नहीं तो शास्त्रों में कहा, विश्वामित्र ने भी इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को भी जीत नहीं सका है। तपस्या ही सब कुछ नहीं है, मेहनत ही सब कुछ नहीं है। आप कहेंगे मुझे क्रोध को मिटाना है, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, क्या करते हो? नहीं, एक कागज आप धूप में रख दो, 10 घंटे रखो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, लेकिन वो कागज कभी भी जलता नहीं है। लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, एक ही मिनट के अंदर उसको भस्म कर सकते हो, कोई चमत्कार नहीं है, ये विधि विधान है। आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए, सूर्य की किरणें एक जगह पर एकाग्र होना चाहिए, एक ही मिनट के अंदर परिवर्तन। तो यहां भी विधि है। ऐसे नहीं मैं योग कर रहा हूं, अभी तक एक क्रोध ही नहीं गया है, अभी तक मेरा स्वभाव संस्कार ही परिवर्तन नहीं हुआ है, कौन मानेगा? हमको भगवान पढ़ाता है, तो भगवान पढ़ाता जरूर है, दवाई एक्यूरेट है, लेकिन दवाई लेने की विधि चाहिए। ये सवेरे खाली पेट लेना चाहिए, ये दवाई खाने के बाद लेना चाहिए, पेट तो एक ही है ना, कभी भी ले लो। नहीं, तब कहा ज्ञान को यूज करने की जो विधि है वो स्वयं शिव बाबा आके पढ़ाता है। तब उसका नाम है भाग्य विधाता, हो भाग्य बनाने की विधि बताता है। बच्चे तन यहां लगाओ, इस विधि से लगाओ। अगर तन के सेवा करते हो, कभी कभी कहते हो मैंने दुआई दिया, मैंने इनको कोर्स कराया, मैं आया, समाप्त। मैंने दुआई दिया, मैंने शुभ भावना दी, मैं शुभ भावना देता हूं, मेरे पास कहां से आया, मेरे दोनों हाथ खाली है, देने वाला वो मिट जाता है। तब बाबा ने कहा, बच्चे मेरे से लेकर, नहीं तो बाबा डायरेक्ट दे सकता है, नहीं दे सकता, अगर मैं दे दूं तो मैं भी इस कर्म बंधन में आएगा। मेरे सारे बच्चे हैं, जैसे सूर्य आया है, लेकिन सूर्य की शक्ति सबको मिलती है, कोई अंदर कंबल ओढ़ के सोया हुआ है तो बाहर बैठ करके सूर्य का उपयोग कर सकता है। भगवान सबको ज्ञान देता है, यूज करने की विधि चाहिए। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने स्वभाव संस्कार को चेंज करने के लिए ज्ञान के एक पॉइंट चाहिए। अगर एक मुरली के पॉइंट ले लो आप, सारे दिन में अपने आप को बार बार पढ़ाते रहो, एक दफा, कम से कम एक दफा, दो दफा, तीन दफा तो बुद्धि को समझ में आता है। तो बुद्धि, मन जो चंचल है, न चाहते हुए कुछ करता है, बुद्धि कहती है इनको देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, उन्होंने गलत किया जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे सामने वाले आपको, आपके ऊपर गुस्सा भी करेंगे, गलत शब्द भी बोलेंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा पढ़ाई मुझे क्या कहता है कि बच्चे तुम्हें चुप रहना चाहिए? तो हमारे उसके ऊपर तर्क है, बाबा हम चुप रहेंगे तो और कुछ करेगा, वो पत्थर मारेगा, थप्पड़ मारेगा, वो चुप थोड़ी बैठेगा। बाबा आप तो ऊपर बैठे हो, आप संसार में आओ तो पता चलेगा क्या होता है। ऊपर बैठ के कहते हो बच्चे चुप रहो, उसकी भी व्यवस्था बाबा ने बताई है। बच्चे ये श्रीमत देने वाला कौन? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा दे रहा है। अगर कुछ हो जाए मैं जिम्मेवार हूं, मैं आपकी सिक्योरिटी करता हूं। जब किसी के साथ बॉडीगार्ड होता है तो बच्चे तुम्हारे साथ मैं सर्वशक्तियों के साथ छत्र छाया बन के खड़ा हूं, ये मेरी जिम्मेवारी है, मैंने बताया है। अगर किसी कारण कुछ हुआ भी उसको भी मैं सुलटा कर लूंगा। समय परिस्थिति के अनुसार कुछ होता भी है, देखने में आता है कि ये होना था कर्म बंधन के कारण, एक मिनट के बाद, एक घंटे के बाद उसको भी परिवर्तन करने की ताकत मेरे पास है। आप अटल अडोल रहो बाप के श्रीमत पर। इसलिए कहा कि जो परिवर्तन करने के लिए सर्व संबंध चाहिए, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ किसका कनेक्शन है, कौन है शुभ बाबा, वो मुझे क्या पढ़ाता है। अगर पढ़ाई पर पूरा विश्वास है, अटेंशन है, ध्यान है, विधि पूर्वक पढ़ते हो तो एक बार जो भूल होती है वो दोबारा नहीं होती है। उसको कहा कि आफ्टर रियलाइजेशन ए सिस्टमेटिक एफर्ट विल ब्रिंग ए चेंज। अगर परिवर्तन चाहते हो सिर्फ मेहनत से नहीं, महसूस किया गुस्सा नहीं करना चाहिए, परिवर्तन नहीं होगा। गुस्सा नहीं करना चाहिए, महसूस होने के बाद विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए, तब परिवर्तन होगा। विधि चाहिए, बाबा ने उसकी विधि बताई है बच्चे क्या क्या करना चाहिए, तब परिवर्तन दिखाई देगा। सिर्फ लक्ष्य रखने से नहीं, मुझे ये करना, मुझे पास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास आना चाहिए, उस अनुसार मुझे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। टीवी नहीं देखना है, इधर उधर घूमने नहीं देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये लक्षण चाहिए। लक्ष्य तो हर एक रखता है लेकिन लक्षण चाहिए। उसको बाबा ने आज मुरली में कहा चाल और चलन ये दोनों चाहिए, आचरण भी चाहिए, तब परिवर्तन होता है। तीसरी बात आई कि रॉयल फैमिली के बाद बाबा ने कहा श्रेष्ठ पुरुषार्थी। आप कहेंगे रॉयल फैमिली नहीं, हमको तो राजा बनना है, तो राजा के लिए भी पुरुषार्थ। कल मुरली में अगर आप देखेंगे, कल मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे संसार में समस्या का कारण क्या है। अगर कल के आपने सबने मुरली सुनी हो, कल के मुरली में बाबा ने प्रश्न किया बच्चे सारे समस्या का कारण क्या है, लूज कनेक्शन। हम समस्या का निवारण किसी व्यक्ति से चाहते हैं, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो कनेक्शन सर्वशक्तिवान से कनेक्शन अगर है तो समस्या का कारण लूज कनेक्शन है, कनेक्शन ठीक चाहिए। फिर बाबा ने कहा बीज रूप के साथ संबंध रखते हो, उस स्थिति में स्थित हो सकते हो, एक सेकंड का नहीं, पांच दस मिनट अगर बीज रूप स्थिति में, ज्वाला स्वरूप स्थिति कहा, जैसे धूप में आप बैठो एक मिनट, जाओ आओ पसीना निकलता नहीं है, कम से कम पांच दस मिनट बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती है, आप चाहो या नहीं चाहो, सूर्य का काम इस शरीर से पसीना निकालता है, लेकिन पांच दस मिनट बैठना पड़ेगा। मैं सूर्य बाहर गया अंदर आया कुछ नहीं होगा, टाइम कंडीशन है। यहां भी एक मिनट गए परमधाम नीचे आ गए, संस्कार परिवर्तन ही नहीं हुआ, नहीं, पांच दस मिनट तक उस स्थिति में स्थित होना है परमधाम में, तो वो शक्ति बहुत जन्मों के कड़े संस्कार है। थोड़ा सा काला दाग लगता है, साबुन थोड़ा सा घिसो नहीं जाता है, बहुत जन्मों के संस्कार है ये। ये काम और क्रोध ये साधारण नहीं, साधारण ज्ञान सुनने से नहीं जाने वाला है। और उसको मिटाने के लिए ही शिव बाबा का एक ही लक्ष्य है। बाबा ने कहा बच्चे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं देता हूं, मेरा एक ही लक्ष्य लेकर मैं इस धरती पर आया हूं। क्या लेकर? कि पतित आत्मा को पावन करना मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही मेरी ड्यूटी है। पतित आत्मा को पावन किया, सारी सृष्टि की संपत्ति अपने आप चुंबक की तरह आपके पास आएंगी। अगर मैं आज किसी को सोने का ताज दे दूं, हीरा दे दूं, तो भी वो संभाल नहीं सकेंगे। क्यों? अंदर पाप है। इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, पाप आत्मा इस सृष्टि की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकती है। धन है, सब कुछ है, तो भी उस संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता है, क्योंकि अंदर पाप है। खाना खाने बैठेगा, गलत विचार चलेंगे, क्योंकि अंदर पाप है। इसलिए बाबा न किसी को धन देता है, न पैसा देता है, न और कुछ देता है, न कुछ भी नहीं देता है, पाप मिटाने की विधि बताता है। ये नंबर वन श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो जो थोड़ा सा समय बचाए, आप जानते हैं संगम का 100 साल है, हर प्रकार से। और बाबा ने बहुत दफा कहा बच्चे अचानक परिवर्तन होगा, अभी ज्ञान बहुत कुछ पढ़ाई किया, जैसे बच्चे भी स्कूल में पढ़ने के बाद अंत में एक महीने का पीरियड होता है, कल परीक्षा होने वाली है, डेट पता है, इधर उधर एक मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जितना हो सकता है लक्ष्य के अनुसार अपना समय सफल करते हैं। तो हमें भी समय सफल करने के लिए तपस्या चाहिए। तो अभी समय को देखते हुए, सुनते बहुत कुछ है, ज्ञान बहुत कुछ है, तो 5 मिनट बिल्कुल कुछ करके देख लो। क्योंकि बहुत कुछ कहते हैं हम संकल्प करते हैं, ये करते हैं। देखो इस हॉल में जितने फैन हैं, अगर सारे फैन चलने लगे तो क्या हो जाएगा? सारा हॉल ठंडा हो जाएगा। ये भौतिक है। अगर हमारे पास 2 फैन है, अगर मन और बुद्धि चलने लगी पॉजिटिव, तो ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। उसको बाबा ने कहा संकल्प शक्ति है, ये साइलेंस पावर है। ये साइलेंस पावर सभी के विघ्नों को, सभी की गर्मी को खत्म कर देंगी। अकेले की तपस्या काम नहीं करता है, संगठित रूप में चाहिए। तो इसलिए 5 मिनट आराम से, गीत भी नहीं बजाना, म्यूजिक भी नहीं चाहिए, साइलेंस, सफेद लाइट में, नहीं तो लाल लाइट होता ना तो आंखें बंद हो जाती है, आदत हो गया है। तो 5 मिनट बैठो, सिर्फ 5 मिनट, 5 प्रश्न है, देखना आप कि ध्यान लगाओ कहते हैं। ध्यान माना मन और बुद्धि, ये दोनों एक करना चाहिए। जब शाम को आप बैठेंगे, नहीं तो हॉल में बार बार कहना पड़ता है आवाज नहीं करो, भीड़ नहीं करो, कहां जा रहे हो, किसको मिलना है। ये अव्यक्त मिलन है, साकार शरीर से नहीं, किसी का दर्शन करने नहीं आया हूं, यहां अनुभूति करने आए हैं। ये वाइब्रेशन ही, शक्ति ही हमारे अंदर परिवर्तन करेंगी। जब शाम को बाबा आता है, देखना आप, 10 मिनट दृष्टि देता है। आत्मा को दृष्टि चाहिए, शक्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप शाम को बाबा आने के बाद, गुलजार दादी आके बैठती है, उसके बाद देखना कैसी दृष्टि देती है। आप 10 मिनट इधर उधर न देखते हुए एक चित्त होकर के, आवाज भी नहीं करो, सिर्फ शिव बाबा इस भ्रकुटी के बीच में आके बैठा है, देखना आप अपने शरीर सब कुछ भूल जाएंगे, एक अनोखा अनुभव करेंगे। लेकिन उसकी तैयारी अभी से करो, आराम से बैठना, बैठ के अपने आप से बात करो। नहीं तो मन में खाना खाने जाना है और कुछ काम करना है, दूसरे विचार आएगा, मन आपके हाथ में नहीं, मन को काम दे दो। बाबा ने कहा मन और बुद्धि को ज्ञान से चलाओ, नहीं वो अपने आप चलेंगे। अपने आप नहीं चलाओ, पुराने संस्कार से बैठकर अपने आप से बात करो, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। फिर पूछो मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। बुद्धि को जागृत करो, छोड़ो नहीं उसको, दे तो दूसरे विचार आएंगे। मेरे 7 गुण हैं, 7ों गुणों को पूछ लो, मेरे गुण कौन से हैं। चौथा मेरे कर्म, मैं आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करता हूं। पांचवा, मैं कहां से आया। ये पांच प्रश्न करके आप देखना कैसा शरीर का भान। बाबा बहुत दफा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, कैसे बने। अभी पांच मिनट करेंगे तो शाम को आप आधा घंटा बैठ सकते हो, एक करके देख लो। ओम शांति।